पाख तेरे उड़ आए, जो पिंजरे थे उड़ कर पंछी नीले गगन में जाए, पाख तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पाख तेरे उड़ आए, पाख तेरे।
ओम शांति। पांडव भवन जो बाबा का मूल कर्म स्थान है ना, साकार बाबा ने जहाँ पर इतनी सारी आत्माओं की पालना की है, ऐसा ये बाबा का स्थान, वहाँ पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। सबने ताली नहीं बजाई, जिन्होंने सबने सुना, हाँ, आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और विशेष स्वागत इसलिए है कि एक बहुत अच्छा चांस आप सभी बाबा के बच्चों को, और मैं यूं कहूंगी कि आप सभी आत्माओं को, है ना, संगम युग में बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माओं का बहुत 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 महत्व है। क्यों? क्योंकि हम ही बाबा के बच्चे नए विश्व की नींव है ना सभी। तो ऐसी आत्माओं को बाबा ने बुलाया है अपने घर विशेष पुरुषार्थ करने के लिए, इसलिए आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी के बीच में बहन ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी उपस्थित है, उनका भी तहे दिल से आप सबकी तरफ से और हमारी तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सत्यम जो करनाल से है वो इस भट्टी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता सुनाएगा।
ओम शांति। ओम शांति। इस सीजन की हर एक मुरली में बाबा ने कहा कि हम हैं बाबा के वहाँ वहाँ बच्चे। सच में जिस परमात्मा की महिमा के गीत गाते दुनिया नहीं थकती, आज वो परमात्मा हमारी महिमा के गीत गाते नहीं थक रहा है। सच में बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, इसीलिए हमें इस भट्टी में ऐसा बनकर ही जाना है, क्योंकि हम हैं वाहवाह बाबा के हम वाहवाह बच्चे, वाहवाह बाबा के हम वाहवाह बच्चे। दिल से रहे सदा साफ और सच्चे, बन जाए लक्ष्मी नारायण जैसे अच्छे। वाहवाह बाबा के हम वाहवाह बच्चे, वाहवाह बाबा के हम वाहवाह बच्चे। ढूंढनी है अपने अंदर की हर एक बुराई, दृढ़ता से देनी है उसको विदाई। कभी स्वप्न में भी ना हो बाबा से जुदाई, कोई भी परिस्थिति आए तो याद रखना मेरे भाई। वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे। दिल से रहे सदा साफ और सच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे। अपने अंदर के उमंग उत्साह को है बढ़ाना, बाबा की एक्स्ट्रा मदद से उड़ना और उड़ाना है। बाबा को प्रत्यक्ष करके ही दिखाना है, बनके अच्छे थे अच्छे। वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे। दिल से रहे सदा साफ और सच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे। पांडव भवन में भट्टी करने का हम सबको मिला है अवसर, इसीलिए आप सबको ढेर सारी बधाई। दूर तो होनी ही है हर गम और तन्हाई, फिर खानी और खिलानी है दिलखुश मिठाई। बाबा के हर बच्चे को मिले स्वर्ग की रजाई, ऐसे ही शुभ संकल्प करने हैं अच्छे से अच्छे। बाबा दादी और बड़े दीदी का सभी शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम सभी बच्चे। वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे, दिल से रहे सदा साफ और सच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे, वाह वाह बाबा के हम वाह वाह बच्चे। ओम शांति।
सत्यम वाह वाह बाबा का वाह वाह सत्यम बच्चा है ना, फिर से तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा सुनाया और दिल से और भाव से और प्यार से है ना।
अभी ये
बहुत अच्छा अभी भाई रमेश भाई आइए,
मधुबन के रमेश भाई,
मधुबन के रमेश भाई एक कविता सुनाएंगे।
कि भट्टी करने आए हैं, भट्टी करने आए हैं भटिंडा वासी, कि भट्टी करने आए हैं भटिंडा वासी, और माया को बना के ही रहेंगे दासी। कि इस धरा पर बजा रहे हैं अनोखा किरदार, और तह दिल से आज आपका हम करते सत्कार, हम करते सत्कार, हम करते सत्कार। कि हीरे तुल्य युग की करली है पहचान, कि हीरे तुल्य युग की करली है पहचान, और तब से मोल बढ़ गया जागा जब समान। कि शब्दों के फूलों से आपका है स्वागत, और बिना मोल के मोती है लगी नहीं लागत, लगी नहीं लागत, लगी नहीं लागत। पांडव भवन में आपका हो रहा अभिनंदन, कि पांडव भवन में आपका हो रहा अभिनंदन, और वंदे मातरम के रूप में हो रहा आपका वंदन। मैंने सोचा माताएं तो ज्यादा आई ही होंगी, तो इसलिए मैंने ये खास माताओं के लिए लिखा है। माताएं बहनें, साथ में भाई हैं उनके लिए भी लिखा है। कि पांडव पति के साथ पांडव निभा रहे किरदार, और इसीलिए तो भावपूर्ण हो रहा सत्कार, हो रहा सत्कार, हो रहा सत्कार। कि आज आपका स्वागत है भट्टी की वेला, कि आज आपका स्वागत है भट्टी की वेला, और यही बल साथ चलेगा बाकी चला चली का ठेला, और भट्टी से करके जाएंगे अविनाशी कमाई, और कभी ना भूलेंगे याद बाबा की, रहेगी सदा समाई, रहेगी सदा समाई, रहेगी सदा समाई। ओम श्री।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महसूस करते होंगे कि सभी पांडव भवन निवासी आप सबके स्वागत के अंदर सबका चेहरा एकदम हर्षाया हुआ है, और साथ साथ आप फील करेंगे, महसूस करेंगे बाबा, बाबा के साथ बाबा है ना, बाबा के साथ बाबा, वो भी हाथ पसारे हुए आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारी प्यारी मम्मा का ये मास है, वो भी आप सबका स्वागत कर रही है। फील करना, आप फील करो है ना, बाबा और मम्मा भी स्वागत कर रहे हैं। हमारी प्यारी दादी जी, वो भी बहुत बहुत खुश होकर के आप सबका स्वागत कर रही है। हमारी दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी, सबको आप अपने आंखों के सामने देखिए है ना। हमारे सभी वरिष्ठ भाई, सभी दादियां, सबको बहुत खुशी है आप सभी को देख करके। सूक्ष्म में आप सबको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उनको, जो देख रहे हैं वो हाथ ऊपर करें, बहुत अच्छा है ना। सूक्ष्म रूप से हम सभी आत्माओं की पालना कर रहे हैं, और आप सभी सभी दादियों, दीदियों, वरिष्ठ भाइयों को बहन शिलू बहन में देखेंगे है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमें विशेष भट्टी का लक्ष्य बताएंगे। भट्टी में ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य हमारा विशेष है, बहुत छोटी आयु से शिलु दीदी, बहुत छोटी आयु से बाबा के ज्ञान, बहुत छोटी आयु से समझा, 10-11 साल की आयु से बाबा की सेवा में समर्पित है। 38 ईयर से यहाँ पांडव भवन में है। मुझे याद है कि हम शुरू शुरू में जब बाबा की मूली सुनते थे अव्यक्त बाप दादा की, तो बाबा ने, अभी तो हमारा विस्तार बहुत हो गया है, उस समय तो छोटा सा परिवार था, तो उस समय बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने शिलू बहन को बोला था कि सरस्वती तुम्हारी जीभ पर है, समझा। उस समय जिसको हम अभी आजकल के समय में फैकल्टी कहते, वो सब कहते हैं, परंतु उस समय शिविर की भी पायोनियर जिसको कहा जाए यहाँ शुरू करने के लिए शिलू बहन ही निमित्त बनी है। साथ साथ हमारा जो टीवी के अंदर प्रोग्राम, अभी तो बहुत प्रोग्राम आते हैं, पर शुरू जब हुआ तब शिलू दीदी ने ही सीरीज ऑफ लेक्चर्स, बहुत ज्यादा लेक्चर्स टीवी चैनल्स पर दिए हुए हैं। अभी आप एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है और विदेश में भी बाबा का संदेश लेकर के कई स्थानों में आपने सेंटर शुरू भी किया हुआ है और विदेश सेवा में बहुत बार जाकर के बाबा के बच्चों को अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रेरणा दी है। तो जितना कहे उतना कम है ना। तो ऐसे और यहाँ पर हमेशा रहते हैं सब भट्टी, अभी तो आप सबको पता है कि एक के बाद एक भट्टी के ग्रुप आते रहते हैं और आपकी सेवा अविरत चलती रहती है। तो अनेक आत्माओं के उत्कर्ष के लिए प्रेरणा देने वाले, सबकी दुआओं के पात्र बनने वाले, और विशेष करके विदेश का ग्रुप हमारा जो आता है ना, तो विदेश के ग्रुप के लिए भी शिलू दीदी को निमित है, क्योंकि विशेष करके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भी आप निमित बनी है। तो उन लोगों के लिए पूरा उसको कंडक्ट करना और उसका प्रोग्राम, वो सभी प्रोग्राम शिलू दीदी के सिर पर ही है, वो ही करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं। और आपने देखा होगा, आप जब देखते हैं तो चेहरा कैसा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, समझा। और एक बात बताती हूँ शिलू बहन जी, आपके बदले कई लोग हमें ही शिलू बहन कह लेते हैं, कहीं कहीं मैसेज भी दे देते हैं, फिर मैंने कहा मैं शिलू बहन नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ शिलू बहन कौन है। तो ऐसे शिलू बहन का फिर से हम सभी करतल ध्वनि से कैसे करने का ओम शांति शिलू बहन जी।
डॉक्टर निरंजना का भी तो आप स्वागत कीजिए, पहली बार भट्टी कराने आए। तो आप अपना भी परिचय दीजिए, आप डॉक्टर हैं वैसे प्रोफेशन से, और कैसे बाबा की सेवा में आप लग गए बड़ौदा में, वहाँ पर बहुत बड़ा इलाका आप संभालते हैं, अलकापुरी और उसके कनेक्शन के कई सेंटर्स हैं, परंतु कितनी निर्माण बन करके इस भट्टी को कंडक्ट करने के लिए मुन्नी बहन ने कहा तो तुरंत मान लिया। अब अपना भी तो पहले परिचय दो ज्यादा।
जैसे शिलू बहन ने कह ही लिया है, शरीर का नाम निरंजना है, आप सब जानते हैं, अलौकिक में मेडिकल स्टडी किया हुआ है और इसीलिए बहुत करके तो कॉन्फ्रेंसिस वगैरह में आना होता है, परंतु फिर भी शिविर के लिए भी जब ऑफर किया कि नहीं आप एक ग्रुप संभालो तो अच्छा है। वैसे बड़ौदा में रहते हैं, बड़ौदा अलकापुरी सब जोन है जिसके कनेक्शन में 40 जितने सेंटर्स है, और साथ साथ मेडिकल विंग के प्रोग्राम में भी रहते हैं और कॉन्फ्रेंसिस में भी आते रहते हैं, अपनी उन्नति करते हैं, योग शिविर योग पट्टी में इसलिए हाँ करते हैं कि उस बहाने क्या हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा, है ना, हमारी भट्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वैसे नीचे भट्टी है ही बड़ी बहनों की, परंतु हमने कहा हमें ऊपर जाना है तो भी भट्टी तो साथ साथ हो ही जाएगी। तो अभी मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे, अभी हम शिलू बहन जी से सुनते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले तो दृष्टि द्वारा मिलते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई को देखती है, फिर दृष्टि द्वारा मिलन के बाद फिर ओम शांति से मिलते हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, वो एक दो को याद दिलाते हैं। तो ब्राह्मणों की हर रसम हर रिवाज दुनिया से तो निराला ही है। तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप
जो पांडव भवन मधुबन में योग तपस्या भट्टी करने के लिए पहुंचे हो। इतने सारे भाई बहने होंगे मानसा, बठिंडा, क्या करनाल और सिरसा और कई स्थान, पंजाब, हरियाणा में कितने बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनमें से आप ही गिने चुने बच्चे यहाँ पहुंचे हो। तो आप अपने लिए ताली बजाओ, हम कितने भाग्यशाली हैं। क्योंकि बहुतों ने इच्छा तो व्यक्त की होगी, लेकिन आपको ही सिलेक्ट किया, तो ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है। और ड्रामा अनुसार मधुबन में यमुनी बहन को संकल्प आया, पिछले साल भी किया था, पर इस साल तो अप्रैल महीने से ही लगातार बठियां चल रही है और बहुत समय तक चलेगी। क्योंकि पहले यहाँ अकाउंट्स मीटिंग होती थी तो टीचर्स बहनें यहाँ आती थी अकाउंट्स के लिए, फिर उसके बाद सब शांतिवन चला गया अकाउंट्स का भी सारा प्रोग्राम। तो संकल्प उनको आया और मधुबन निवासियों को भी संकल्प आया कि यहाँ कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम हो। मधुबन की महिमा तो अपरम अपार है, तो यहाँ पर हम कोई बाहर के लोगों को तो नहीं रखते हैं। वैसे जब तक ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था, तो पांडव भवन में वीआईपी के प्रोग्राम होते थे, राजयोग भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, सुखधाम में रहते थे और यहीं होते थे। पर जब से ज्ञान सरोवर बना तब से सारे वीआईपीज के प्रोग्राम, विंग्स के प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस वहाँ होने लगे, फिर शांतिवन में होने लगे। और जो बाबा के महावाक्य हैं कि मधुबन तो पवित्र होली हंसों का स्थान है, यहाँ पर पवित्र होली हंस ही रहते हैं, तो सचमुच भट्टी के प्रोग्राम से तो मधुबन में और रौनक आ गई। क्योंकि बाबा जब भी अपने बच्चों को देखते थे तो बाबा कहते थे ये मधुबन का श्रृंगार है। दादी जी जब भाई बहनों को देखती थी, विदेशी भाई बहनों को भी देखती थी, तो दादी कहती थी देखो बाबा विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व की आत्माएं यहाँ बाबा के बच्चे आते हैं। तो जो भी मधुबन में आते हैं बाबा के बच्चे, वो मधुबन का श्रृंगार बन जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी मधुबन के श्रृंगार हो। इस वातावरण को और रौनक देने के लिए आप यहाँ भट्टी में आए हो। तो मधुबन जो बाप दादा, मम्मा, दादी जी, सर्व वरिष्ठ दादियों की, दादाओं की ये तपस्या भूमि है, यहाँ ही इन सब ने तपस्या की है और फिर सेवा पर निकले हैं। तो आदि सो अंत, फिर मधुबन में वही तपस्या का माहौल है और आप सभी उसमें पधारे हैं। आप सबको जो बैज भी मिला है, सबने तो देखने में लगाया नहीं है, क्यों नहीं लगाया है ना, सबके पास ये बैज है, तो कईयों ने नहीं लगाया, भूल गए, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, भट्टी वाला बैज, ये नहीं, ये तो है ही है, पर भट्टी वाला बैच तो सबके पास है ना, पर कईयों ने नहीं लगाया। जिनके पास नहीं है हाथ उठाई। अच्छा बैच मिला ही नहीं है, क्यों बहन? अच्छा अभी देना है, ठीक है। तो ये बैच आपको मिल रहा है, इस पर लिखा है मौन तपस्या भट्टी, यही है ना बैच, मौन तपस्या भट्टी लिखा है ना। तो ये बैच आप लगाना, मानो आज से आपका मौन शुरू हुआ। तैयार हो इसके लिए? मौन तपस्या भट्टी किसको कहेंगे? तपस्या तो हम सब करते हैं, वैसे तो कहेंगे कि भाई हम तो है ही योगी, और कोई एक घंटा दो घंटा के योगी नहीं है, परंतु हमारा योगी जीवन है। तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते भी योगी जीवन का ही भाग है ये सब, केवल बैठकर ही नहीं योग लगाते हैं। तो जबकि जीवन ही हमारा योगी है, तो जीवन ही तपस्वी है। परंतु इसमें और क्या एडिशन करना है, ये चार दिन मौन तपस्या। मुख का मौन भी बहुत रखते होंगे कि आज मेरा मौन है, मुझे बात नहीं करनी है। कई बहुत स्ट्रिक्ट पालन करते हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं। कोई थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हैं, कोई तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बहुत जरूरी भी होता है तो कागज पेन सदा साथ में होता है, डायरी, और वो लिखत में देते हैं पर मुख से नहीं बोलते हैं। ये भी एक तपस्या है। परंतु इनसे भी ऊंची तपस्या, मुख से कुछ नहीं बोलना, ये भी अच्छी बात है। तो मुख का मौन तो ऊंची बात है ही है कि मुख पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर मन का भी मौन ये और ऊंची बात है कि मन में भी कुछ सोचना नहीं है। इशारों से कुछ कहना या लिख करके देना, ये भी तो मन में तो संकल्प चलते ही होंगे ना, तभी तो लिखेंगे या इशारे से वर्णन करेंगे, बताएंगे। पर मौन में मन का भी मौन हो, ये बहुत ऊंची अवस्था है। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तीन चार दिन आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। माताओं को खाना नहीं बनाना है, बनी बनाई थाली आपको मिलेगी, बस भोजन करना है बाबा की याद में। भाइयों को धंधे पर नहीं जाना है, नौकरी पर नहीं जाना है, और माताओं को बच्चों को भी तो संभालना नहीं है, स्कूल नहीं भेजना, नाश्ता नहीं पकाना, जल्दी 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 जल्दी, यहाँ कहता है ना माताओं को तो बहुत सेवा होती है। तो कोई भी प्रकार की और स्थूल सेवा यहाँ नहीं है, आपको सिर्फ तपस्या करनी है। और उसमें मौन तपस्या तो ये सोने में सुहागा का काम करेगी, अर्थात क्योंकि और कुछ कार्य नहीं है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो कोई बहुत जरूरी बात है तो जहां 10 शब्द हो उसकी जगह 2 शब्दों में निपटारा कर दो। और आप सबके पास एक छोटा सा खिलौना है सबकी जेब में, है ना, कौन सा, मोबाइल, तो उसको स्विच ऑफ करके रख सकते हो चार दिन कि बचता रहेगा। स्विच ऑफ करना, वाइब्रेशन या साइलेंस पर भी नहीं, स्विच ऑफ। अगर किसी से जरूरी कुछ बात है तो आज ही उनको कह दो कि भाई मैं चार दिन अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखूंगा या रखूंगी, आप मुझे फोन नहीं करना। तो उनको पहले से ही पता होगा, और वो उनको को आप भी सबको कह दो कि मैं चार दिन यहाँ मौन तपस्या भट्टी में हूँ और मुझे और कुछ नहीं सोचना है, तो मैं ये स्विच ऑफ करके रखूंगा। क्योंकि हॉल में ये बजने नहीं चाहिए, अगर किसी का बजा मना आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो इसीलिए बिल्कुल इस हॉल में नहीं बजने चाहिए, नहीं तो यहाँ से सुर बजता, यहाँ से सार पर कुछ न कुछ साज बजता ही रहता है, तो डिस्टर्बेंस तो होती ही है। और बाहर भी नहीं हो, जरूरत ही नहीं है, बहुत जरूरी है तो मना भी नहीं है, कोई हठयोग नहीं है हमारा, लेकिन बहुत ऊंची आवाज में नहीं। इसलिए ये बैज आपको दिया गया है। एक हंसी की बात आपको सुनाऊं, हमारे पास विदेशी भाई बहने आते हैं, वो भी यहाँ पर साइलेंस में रहते हैं। तो एक विदेशी भाई था, बड़ा मजाकी था, ह्यूमरस, हल्का, बहुत हंसाता रहता था। तो उसने साइलेंस का बैज लगा दिया, और साइलेंस का बैज लगा करके खूब बोल रहा है। तो हमने उसको कहा, अरे साइलेंस का बैज लगा रहा, इतना बात कर रहे हो, तो कहते ये मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ क्या लिखा है, ये दूसरों के लिए है ताकि दूसरे पढ़े और मेरे से बात नहीं करे। मैं तो सबसे बात कर सकता हूँ, पर दूसरे मेरे से न करे, इसलिए बैज लगाया है। पर इसलिए बैज नहीं लगाया, किस लिए लगाया है, अपने लिए या दूसरे मेरे से बात न करे, दोनों बातें हैं, अपने लिए भी है और दूसरे भी नहीं करे आपसे। क्योंकि जैसे आपका ये बैच देखेंगे वो साइलेंस में रहेंगे, और आपको भी ध्यान रहेगा कि मैंने ये साइलेंस मौन तपस्या भट्टी का बैज लगाया है और ये चार दिन मुझे एकदम तपस्या करनी है। किसको कहेंगे तपस्या? जब बाबा कहते हैं एक की लगन में मगन, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक व्रता हाँ एकाग्रता एक 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 को हम महत्व दें। वैसे भी पंजाब में तो ग्रंथ में कहते एक ओंकार, तो एक का बड़ा महत्व है। गुरु नानक को कैसे दिखाया है अपनी उंगली ऊपर करते हुए, तो सचमुच उस एक की ही लगन में मगन रहे। हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम क्यों हैं और हमें कहाँ जाना है। दीदी जी बड़ी दीदी थी, वो हम लोगों को एक का पाठ बहुत पक्का कराती थी। जब भी कोई आता था तो बड़ी दीदी जी कहा करती थी कि रोज सवेरे जब उठते हो ना, जैसे ही आंख खुलती है गुड मॉर्निंग बाबा करते हो, तो उस समय सवेरे सवेरे 5 केले खाओ, 5 केले खाओ। खा सकते हो? नहीं, 5 केले सुबह सुबह खा सकते हो? कौन खा सकता है? कोई केले हमको पसंद ही नहीं है, तो कौन से 5 केले? वो केले नहीं जो खाने है, लेकिन 5 केला कौन सा? 5 बातें याद करो। अकेले आए हैं, ये पहला केला। कौन सा? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये दूसरा केला। अकेले आए हैं, अकेला जाना है, अकेले में बिल्कुल एकांत, कोई की आवाज नहीं, अकेले में अकेला होकर, मन से भी कोई देहधारी की याद नहीं, अकेला होकर अकेले को याद करना है। हो गई 5 केले? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर मन से भी और अकेले को याद करना है। ये सवेरे उठ के ये 5 केले खाओ और दिन भर भी ये प्रैक्टिस करो, किसी भी देहधारी की याद ना आए। घर जाना है पर घर जाने से पहले ये 5 केले खानी है। दीदी जी का अंतिम दिनों में यही स्लोगन था। जब भी कोई बात आती थी ना, कोई बात, कोई समस्या, कुछ भी, किसी की, दीदी कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, सब समेटते जाओ, समेटते जाओ। घर जाना है तो समेटना पड़ेगा ना। दफ्तर में आप काम करते, सारा कारोबार आपने खोल के रखा है और अभी घर जाने का समय, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे ऐसे? क्या करेंगे? समेटना पड़ता है ना। दुकान में भी सब समेटना पड़ता है, तभी तो बंद करेंगे ना। तो इसीलिए सब समेटना पड़ेगा। तो इसीलिए ये 4 दिन सब कुछ समेटा हुआ हो, तो समेटा हुआ होगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, पर खुला हुआ होगा तो याद आता रहेगा। तो बुद्धि में सब कुछ समेट लिया। कैसे समेटेंगे, क्या समेटना है? जो कुछ भी एक्स्ट्रा बातें हैं संसार की, वस्तु वैभव, ये जो भी हिसाब किताब रचना भी चाहो, मानो बाल बच्चे, इतना बहुत विस्तार है इस संसार में, देह और देह के अनेक संबंध है, वो सब कुछ समेटना है। न मेरे थे, न मेरे हैं, न मेरे रहेंगे, ये तो सब हिसाब किताब है, जिसको ही हम उपराम अवस्था कहते हैं, इसको ही हम बेहद का वैराग्य कहते हैं। तो ये 4 दिन वैसे भी दुनिया की निगाहों से आप दूर हैं, कोई भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं है। जहां आप रहते होंगे कितना प्रदूषण, बात मत पूछो, सब जगह गाड़ियों का आवाज, तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण, बिजली नहीं तो गर्मी गर्मी गर्मी। यहाँ पर सचमुच स्वर्गीय अनुभव है, क्योंकि तुरंत बिजली जैसे ही गई जनरेटर हमारा चलता, पता भी नहीं चलता कि बिजली नहीं है। अभी गर्मी इतनी है चारों तरफ, पंजाब में तो बहुत गर्मी है, बारिश तो ही नहीं होगी ना, हुई है हा? मौसम कैसा, गर्म है ना, बहुत गर्म है। और यहाँ आए तो क्या लगा, फरहत मिल गई या ठंडक मिल गई, रहो बहुत आनंद आया। तो सचमुच ये चार दिन ये स्वर्गीय अनुभव यहाँ करना, कुछ भी आपको परेशानी नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, नहीं सब कुछ है। बाकी ये जरूर है कि थोड़ा ध्यान रखना, पानी वेस्ट नहीं करना, बिजली वेस्ट नहीं करना। जैसे अपने घर में आप ध्यान रखते हैं ना, तो यहाँ भी अगर कूलर वूलर तो यहाँ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, पर पंखे हैं, एसी की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो ये कुछ पंखे भी नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे तापमान दुनिया का बढ़ा तो आबो का भी तो बढ़ा, तो पंखे लगाने पड़े। पर फिर भी अभी तक कूलर नहीं है यहाँ, एसी की भी जरूरत तो है ही नहीं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि बिजली और पानी की बचत करें। हो सकता है कभी नलका खोले और पानी ना आता हो, लेकिन आप बंद जरूर करें, नहीं तो खुला छोड़ के रखेंगे तो फिर पानी आएगा तो बेहतर रहेगा, इसलिए वो ध्यान जरूर रखें। फिर भी बाबा की मेहर है कि चारों ओर रेगिस्तान है, परंतु फिर भी माउंट आबू में नक्की झील है और यहाँ दो बहुत बड़े डैम्स है जहाँ से पानी मिलता रहता है, कुआं है बाबा का, कई बोरवेल्स है जहाँ से पानी मिलता रहता है, परंतु जरूर इसका ध्यान रखेंगे। इसीलिए पानी भरना है, पानी चला जाएगा, ये होगा वो भी चिंता नहीं, आ जाएगा पानी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने वाले हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो वो अपने आप ध्यान रखते हैं। इसीलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल देवता की तरह यहाँ चलना है, फरिश्ता की तरह चलना है, आत्मा बिंदु बन करके बाबा की याद में बैठना है। तो इसको कहेंगे मौन तपस्या, तप करना है, बट्ठे में पकना है। बट्ठा होता है ना, बट्ठी या बट्ठा, तो बट्ठे में क्या होता है, आग जलती है, आग बहुत तेज आग होती है। तो आग में कोई भी चीज पड़ी तो क्या हो जाता है, वो बदल जाती है, डिपेंड्स क्या चीज आग में डाली। कई प्रकार की चीजें हैं और उस अनुसार उनमें परिवर्तन आता है। काला कोयला डालो आग में तो क्या होगा, राख बन जाएगा, काले कोयले से एकदम वो राख बनेगा, थोड़ा रंग तो बदला। फिर उसमें आप बहुत कठोर कोई चीज डालो, बैंगन टमाटर या आलू कच्चा, और उसको आग में डालो तो क्या बन जाएगा, बर्फा बन जाएगा, आलू पक जाएगा, मानो नरम हो जाता है, तो सख्त चीज नरम हो जाए। बहुत कठोर संस्कार एकदम, वो एकदम ऐसे नरम हो जाए जैसे कि वो कठोर संस्कार था ही नहीं। एक भाई था, उसको जोर जोर से बोलने की बहुत आदत थी। हम उसको कहते थे भाई जी थोड़ा धीरे से बोले, धीरे से बोले, यानी जरूरत क्या है, अब आप खाली इनसे बात कर रहे हैं ना, तो सबको सुनाने की जरूरत तो नहीं है ना, एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा धीरे से बोले। कहता है क्या करो बहन जी, माँ बाप ने ऐसा गला दिया है, बताओ दोष किसका, माँ बाप को, माँ बाप को क्या दोष दे रहे हैं, उन बिचारों का क्या दोष कि मेरा पिताजी भी इतना जोर जोर से बोलता था तो मुझे भी वही संस्कार मिला है। तो पर माँ बाप को थोड़ी दोष दे सकते, तो हमारे हाथ में है कि हम अपनी आवाज को अपनी स्वर को धीमा करें। तो सचमुच उसको बहुत लगा और उसके बाद उसने इतना पुरुषार्थ किया, भट्टी में आया था, परंतु अपने को कहता मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। तो मैं जब भी मिलता था मैं उसको इशारा करती थी और बिल्कुल फिर सहम जाता था, मैं ना आज्ञाकारी भी बना, बहुत रिस्पेक्ट भी था। और सचमुच जाने से पहले उसने अपना अनुभव सुनाया, क्योंकि उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई क्योंकि 4 दिन उसने ये लक्ष्य रखा, मुझे मौन में रहना है, मौन में रहना है, मौन में रहना है। जब भी उसको देखती थी मैं उसको ऐसे कहती थी, क्योंकि उनकी टीचर ने मुझे कहा था कि बहन जी आप इसको ये बदलने वाला नहीं है ना, बहुत हमने कोशिश की, आप ट्राई करो मधुबन के अंदर। तो जब भी मुझे मिलता था मैं उनको इशारा करती थी तो एकदम चुप हो जाता था। और 4थे दिन जब लास्ट में अनुभव अपना सुनाया तो बड़ा वंडरफुल अनुभव उसने सुनाया, कहा कि अब तो लगता है कि इतना अच्छा लगता है मौन में रहना, जो अब आवाज में आने में मेहनत लग रही है, मानो कहां वो अपने आवाज को रोक ही नहीं पाता था, अभी आवाज में आने में मेहनत लग रही है। तो मैं तो यहाँ से ये परिवर्तन करके जा रहा हूँ कि मैं अपनी आवाज को बहुत कम करूंगा। तो देखो माँ बाप का दोष नहीं है, करना है तो अपने अंदर ही ये हमारे में परिवर्तन लाना है। तो जब भी ऐसे आवाज जाए, बड़ा आवाज हो, फिर से याद करो अपने आप को, मैं मौन भट्ठी में हूँ, मैं मौन भट्ठी में हूँ। तो ये तपस्या में अपने आप को पकाना है। तो जो कठोर संस्कार है वो सब नरम करने हैं, सॉफ्ट करना है। फिर मिट्टी की ईंट भट्ठे में पड़ती है तो क्या होता है, कितनी स्ट्रांग, कितनी मजबूत बन जाती, नहीं तो मिट्टी तो टूटने वाली चीज है, अलग होने वाली चीज है, पर जैसे ही भट्ठे में पकी वो इतनी स्ट्रांग हो जाती, इतनी मजबूत हो जाती कि अगर गिरी भी तो भी अगर ऐसी स्ट्रांग है तो नहीं टूटती है। तो देखो इस भट्ठी से ऐसे मजबूत बन के जाना, यही उद्देश्य है, यही हम लक्ष्य रखेंगे, कितने मजबूत बने कि चाहे मेरे सामने कितनी भी परिस्थितियां आए लेकिन मैं उन परिस्थितियों में विचलित नहीं हूं। क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी और हो सकता है भट्ठी के बाद और भी ज्यादा परीक्षाएं आएंगी। आप कहेंगे भट्ठी क्या करके आया, ये तो पहाड़ मेरे ऊपर परीक्षाओं का आ गया, वो भी आएगा। लेकिन ये भी याद रखना कि मैं भट्ठी से पक करके आई हूँ, मजबूत होकर के आई हूँ, ये समस्याएं कोई समस्या नहीं है। जो बाबा कहते हैं ना, शेर की तरह आएगी लेकिन ये कागज का शेर है, पहाड़ की तरह आएगी लेकिन ये चींटी की तरह है। तो वो कितनी भी बड़ी समस्या आए लेकिन मैं उनसे ऊपर चला जाऊं। बाबा हवाई जहाज का मिसाल देते हैं कि हवाई जहाज जैसे नीचे होता है तो सब बड़ा बड़ा, अंदर बैठने वाले दिख सब बड़ा बड़ा है, पर जैसे ऊंचा जाता है तो क्या होता है, सब वो बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी दिखाई देने लगती है, और केवल छोटी नहीं उसके बाद तो गुम ही हो जाती है, और उस जब जैसे गुम हो जाती है फिर बादलों से भी ऊपर चला जाता है तो और ही कुछ नहीं दिखाई देता, और फिर वो सीधी लेवल में जब जाता है तो पता भी नहीं चलता कि हम हवाई जहाज में बैठे हैं, पता भी नहीं चलता है। और वो उड़ता जाता है। तो देखो शुरू शुरू में जब भट्ठी बनी तो बाबा कहते थे कि तुम बच्चों को अभी रेस करनी है, दौड़ना है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने कहा रेस दौड़ना नहीं है, दौड़ने में भी मेहनत है, हाई जंप दो, हाई जंप, एकदम जंप मारेंगे तो कितना एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। फिर बाबा ने कहा नहीं हाई जंप भी नहीं, लेकिन क्या करना है, उड़ना है, उड़ना है, उड़ती कला का अनुभव करना है। तो उड़ती कला का अनुभव कैसे करेंगे, जब डबल लाइट होंगे, अगर भारी होंगे तो उड़ नहीं सकेंगे, दौड़ भी नहीं सकेंगे, हाई जंप भी नहीं दे सकेंगे, उड़ना तो बहुत दूर, इसलिए डबल लाइट बनना है। कैसे बनेंगे डबल लाइट, कोई भी बोझ हमारे सिर पर न हो, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हाँ मेरा इतना बड़ा व्यापार है, सब छोड़ के आया हूँ, ये सब कुछ नहीं याद करना है। क्या हूँ मैं, हल्के कैसे रहेंगे, बच्चा हूँ, क्या बन के रहना है यहाँ, बच्चा हूँ। देखो ये बच्ची इतनी प्यारी, छोटी बच्ची, इतनी इनोसेंट, बाबा तो कहते बच्चे महात्मा समान है, तो महात्माओं को भी सारा समझ तो है ना विकारों की, बच्चों को तो वो भी नहीं, तो वो महात्मा से भी ऊंचे, तो इतना इनोसेंट बन जाओ जैसे कि दुनिया कुछ है ही नहीं। ये चार दिन कोई भी प्रकार का खिंचाव इस संसार का न रहे। ये चार दिन तो करके देखो, चार दिन का बहुत बड़ा प्रभाव है। छह दिन हो जाएंगे आना जाना, घर से निकले वापस पहुंचते, आठ दिन तो हो जाएंगे, नहीं आठ दिन हो जाएंगे। परंतु ये आठ दिन आपके आठ महीना आठ साल के बराबर अनुभव हो, कितना हम अनुभव करके जाएंगे, अमित छाप अपने जीवन पर लगा के जाएंगे। इसलिए बाबा जब भी मुरली चलाते थे, बाबा दो बातें हमेशा कहते थे, मधुबन में क्यों आते हो? एक तो बादल भरने आते हो, ये सागर का कंठा है, सागर के ऊपर आप देखेंगे बादल बहुत होते हैं, रेगिस्तान के ऊपर बादल नहीं होते, पर सागर के ऊपर बादल बहुत होते हैं, क्योंकि वो बादल पानी को खींचते हैं और फिर जाकर के बरसते हैं। तो यहाँ आए हो बादल बनकर, भर करके जाना और फिर जाकर के बरसना। दूसरा बाबा कहते हैं मधुबन क्या है ना, ये बैक पावर हाउस है, तो पावर हाउस से बिजली लेते हैं ना, तो बैटरी को चार्ज करते हैं। तो पावर हाउस में आप आए हो अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने, फिर यूज करो, क्योंकि वहां जल्दी डिस्चार्ज हो जाती, इसलिए फिर से चार्ज करने यहाँ आओ। तो मधुबन में आप आए हो अपनी बैटरी को चार्ज करने, बादल भरने, शक्ति भरने, ताकि फिर जाकर के आप सबको ये बांटो। तो इसीलिए इस भट्टी में इतना पकना है, इतना पकना है जो बिल्कुल बदल कर जाओ। तो एक तो भट्टे में मजबूत बनते हैं, दूसरा नरम भी बनते हैं, फ्लेक्सिबल। नरम माना फ्लेक्सिबल, कोई बहुत कठोर होता है ना तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ नहीं सकता, और जो मुड़ नहीं सकता ना वो विनाश को जल्दी पाता है। जो चीज मुड़ सकती है ना वो बच जाती है। तूफान आता है, आंधी आती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं, झुक नहीं सकते हैं, तो वो तो तूफान में क्या होता है, गिर जाते हैं। और जो नरम नरम पेड़ होते हैं जो झुक सकते हैं वो बच जाते हैं। तो इसलिए इस भट्टी में इतना निर्माण होकर के जाना है, इतना निर्माण जो जितना निर्माण अर्थात उतना ही स्वमान, अंतर का स्वमान बहुत ऊंचा हो परंतु उतना ही निर्माण कि ये बाबा ने हमें बनाया। तो अंदर में फ्लेक्सिबल यानी मुड़ सको, कोई सामने आए सहन शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, समेटने की शक्ति हो, बिंदु लगाने की शक्ति हो, ये सब मुड़ने की शक्तियां हैं। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है, ये सब मुड़ने की शक्तियां हैं। और किसी परिस्थिति से घबराना नहीं है, ये सामना करना है, ये तो चींटी के समान है, हम ऊंचा उड़ जाएं। जिसमें बाबा दो मिसाल देते हैं, एक मिसाल है जैसे कछुआ, कछुआ क्या करता है, अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, जब देखता है कोई सामने बात आई अपने अंगों को अंदर ले लेता, अपनी रक्षा करना जानता है। तो आत्मा अपनी रक्षा कर सके, उस परिस्थिति के वश न हो जाए, उस बात के अधीन न हो जाए, उस बात के कारण अपनी स्थिति को नहीं बदले, बात तो आएगी और जाएगी लेकिन अपनी स्थिति नहीं बदले, इसके लिए अंदर चले जाओ कछुए समान, या फिर पंछी बन जाओ, उड़ जाओ, जो मिसाल दिया हवाई जहाज का, उड़ जाओ। दो पंख हमको मिले हैं, ज्ञान योग के पंख, हर बात को हम समझ सकते हैं, इसका आदि मध्य अंत क्या होगा, तो न्यारे और प्यारे सहज बन जाओ। तो ये भट्टी में पकना है इस रूप से। और क्या होता है भट्टी में, हाँ, सोना डालो, खाद वाला सोना, तो क्या होता है, जो खाद होती है ना उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है सोने से, लोहा तांबा ये चांदी, ये सोने से उनकी जो पिघलने की जो टेम्परेचर है पिघलने का वो कम होता है, सोने का बहुत ऊंचा होता है पिघलने का टेम्परेचर। तो बाकी सब जो जैसे आग को आग में डाला सोने को, खाद वाला सोना, तो क्या होता है वो जो खाद है वो निकलती जाती पिघलती जाती है और लास्ट में सच्चा सोना रह जाता है। वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, जितनी उसमें खाद पड़ती है उतना कठोर होता जाता है। तो कई बार बाबा पुरानों को ये कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, जो पुरानी है वो गोल्ड है, वो सच्चा सोना है। क्योंकि कितने सालों से बाबा के बच्चे बन के रहे हैं, कितनी बातें उनके सामने आई, लेकिन वो मुड़ सके हैं, अपने आप को उसमें झेल सके हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सके हैं और अडिग हो करके, अटल हो करके, बिल्कुल हिलने वाले नहीं, ऐसी आत्मा बन करके अभी भी चल रही है, मानो वो सच्चा गोल्ड है। तो इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड, क्योंकि वो सच्चा सोना मोल्ड हो जाता है। तो इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ऐसा सोना बनो। नयों को बाबा फिर दूसरा टाइटल देते हैं, इसमें नई नए भी होंगे, पुराने भी बहुत हैं, कई तो नई नई भी देख रही हूँ। तो नयों को फिर बाबा बहुत सुंदर टाइटल दूसरा वरदान देता है। क्या देता है नयों को वरदान? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो नयों को ये नहीं ख्याल आना चाहिए हम तो अभी नए हैं, हमने तो कुछ भी अनुभव नहीं किया है, हम पहले आते होते तो कितना अच्छा होता था, पहले आते तो हम बहुत आगे जाते, अभी तो बहुत लेट आए हैं। तो बाबा कहते ये भी मत सोचो, लेट आए हो परंतु टू लेट नहीं आए हो, टू लेट का बोर्ड लग गया माना खत्म, अभी आगे कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। पर लेट आकर के भी आप बहुत आगे दौड़ सकते हो, उड़ सकते हो। इसलिए उनको फिर बाबा अलग वरदान देते हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट भी आ सकता है, क्योंकि जो बहुत पुराने हो सकते थोड़ा थके हुए भी हो, बहुत पुरुषार्थ किया थक गए हो, लेकिन जो नए हैं उनमें जोश है, तो इसलिए वो और आगे जा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी को देखो मत, जब रेस होती है ना, अगर दूसरों को देखते रहेंगे तो क्या होगा, हम थोड़ी दौड़ सकेंगे। किसी को देखना नहीं है और अपना भी पीछे नहीं देखना है। कई अपना पीछे देखते, औरों को तो नहीं देखते, अपना पीछे वाला देखते हैं। मैं बहन जी पहले ना बहुत गुस्से वाली थी, बहन जी मेरे अंदर ये अवगुण था, ये अवगुण था, अब तो मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत बदल गया हूँ, ये भी मत कहो, क्योंकि पूरा नहीं बदले हैं, अभी तो बहुत बदलना बाकी है। तो जो सचमुच जो दौड़ता है वो मंजिल को देखता है, पीछे को मुड़ के नहीं देखता। अगर पीछे को मुड़ के देखे उसमें टाइम जाता है, कहाँ तक आए, कितना दूर गए, जरूरत नहीं है। पर किसको देखना है? मंजिल को देखना है। मंजिल क्या है हमारी? बाबा है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, पावन बनना है, घर जाना है, कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, कोई सजा खानी नहीं है, यहाँ ही सब कुछ खत्म करके जाना है। इसलिए मंजिल को देखना, दूसरों को भी मैं देखो, ये क्यों ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कुछ भी करे दूसरा वो जाने, उसका हिसाब किताब वो जाने, उसका कर्म वो जाने, मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। इसीलिए न अपना पीछे का देखना है न किसी और को देखना है, और ये भी नहीं खुश होना है कि हाँ मैं तो बहुत बदल गया, बहुत बदल गई, क्योंकि कई इसमें ही ना वहीं ठहर जाते हैं, मैं तो बहुत बदल गई बहन जी, पहले मैं ये करता था, ये करती थी, करता था, अभी ये सब छोड़ दिया, तो इसमें खुश हो जाते हैं। पर बाबा कहते हैं संतुष्ट भले रहो पर थोड़े में खुश मत हो जाओ, बहुत कुछ लेना है बाबा से, पूरा अधिकार लेना है। बाबा कई बार मुरली में कहते, कोई कहते कोई बात नहीं, कल अब पहले जैसे जो पद मिला होगा चलेगा, पर बाबा क्या कहते हैं चलेगा, ड्रामा तो बना बनाया है, फिक्स्ड है, वही चलेगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मुझे तो महाराजा महारानी बनना है या प्रजा बनना है, क्या बनना है, दासदासी बनना है, क्या बनना है, विश्व महाराजन बनना है। तो भले उसमें 8 गद्दियां हैं, तो क्या मैं गद्दी नहीं ले सकता हूँ? ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? उस दिन बाबा की लास्ट संडे की जो अव्यक्त मुरली थी, उस अव्यक्त मुरली में बाबा विदेशियों को संबोधन कर रहे थे। सुनी होगी वह अव्यक्त मुरली। तो मुझे याद है 78 में यहाँ इसी ओम इस मेडिटेशन हॉल में बहुत सारे विदेशी थे, मैं ट्रांसलेशन तो करती थी। तो बाबा ने विदेशियों को बहुत सुंदर बातें कही कि आप 100 आप 8 के माला में आ सकते हो। तो विदेशी क्या सोचते हैं, हम थोड़ी 8 की माला में आ सकते हैं। आ सकते हो बाबा ने कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा कि 108 की माला में भी आ सकते हो। तो ऐसे मत सोचो नहीं आ सकते हैं, बाबा और लड़िया और बढ़ा देगा। इसलिए चिंता मत करो, बस मुझे आना है ये तो सोचो, यही सोचो बस, मैं कैसे आ सकता हूँ ये मत सोचो। तो मुझे याद है तो बाबा ने जब ये बात कही ना पिछले हफ्ते की जो संडे की मुरली थी, तो उसके बाद एक भाई था विदेशी भाई, वो दादी जी के पास आया। दादी जी को कहता है, बड़ी दादी जी को कहता है, दादी जी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सेकंड नारायण बनेंगी। तो मजाकी होते ना विदेशी, कई बार बहुत इस प्रकार से अच्छी सुंदर बातें सुनाते हैं। दादी जी आप सेकंड नारायण जरूर बनेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो दादी जी उनकी शक्ल देखने लगी। तो दादी जी ने कहा, किसने कहा आपको? बाबा ने कहा, बाबा ने तो मुझे तो नहीं कहा है कि तुम सेकंड नारायण बनोगी। तो दादी आप क्यों, आप नहीं बनेंगी, कैसे नहीं बनेंगी, आप बनेंगी। तो दादी ने उसको बहुत सुंदर बात कही, दादी ने कहा कि आप ये सोचो मैं नहीं बन सकता हूँ, यानी ये क्यों सोचते हो आप मैं बनूंगी, आप भी बन सकते हो, आप बन सकते हो। तो बेचारा वहीं पर एकदम हैरान हो गया, दादी ने उनको कैसे उनको ऐसे कहा। दादी ने कहा ये मत सोचो ये बनेंगी वो बनेगा, मैं भी बन सकता हूँ, बस ये अंदर में हिम्मत रखो आप बन सकते हो। बाबा ने कहा है ना, क्यों नहीं आ सकते हो 8 की माला में। इसीलिए ये कभी नयों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो लेट आए, क्योंकि म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल रहा है। म्यूजिकल चेयर्स का खेल देखा है ना, सब कुर्सियां खाली है, कोई भी कुर्सी पर बैठा नहीं, क्योंकि म्यूजिक चल रहा है, अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, वो पढ़ाई है हमारी म्यूजिक। बाबा कहते जब पढ़ाई पूरी होगी वापस जाएंगे तब ही सबकी सीट फाइनल हो जाएगी, अभी किसी की भी सीट फाइनल नहीं है, केवल बाबा मम्मा की बस, बाकी किसी की भी सीट फाइनल नहीं है। तो इसीलिए कोई भी ये न सोचे नए जो है दिल शिकस्त हो जाए कि हम तो नहीं बन सकते। और अगर अंदर में ये हिम्मत है ये संकल्प है तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी मेहनत कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, बस ये अंदर में रट लगाओ या जो कुछ कहो अंदर में, ये आपका मंत्र आपका जाप भले ये चलता रहे, ये इस भट्टी से करके जाना। तो इसीलिए सच्चा सोना बनना है, सारी खाद मुझे निकाल देनी है, बाबा के आगे मैं सच्चा सोना बन के जाऊं। और फिर और क्या होता है, आग में डालने से जैसे किचरा डालते हैं, आग में जलाते हैं ना किचरे को, तो धुआं बन करके वो कार्बन बन के उड़ जाता है। तो जो भी किचरा है वो इस योग अग्नि में स्वाहा करना है, कुछ भी किचरा लेके नहीं जाना है, कंचन आत्मा बन जाए। काया तो नहीं बनेगी कंचन यहाँ, लेकिन सतयुग में कंचन काया जरूर मिलेगी, पर उसके पहले आत्मा को कंचन बनना है। तो कैसे बनेंगे कंचन, बस एक की लगन में मगन। तो यही 4 दिन आप उद्देश्य रखना, ये लक्ष्य रखना, मुझे संपन्न बन के जाना है, संपूर्ण बन के जाना है। हो सकेंगे 4 दिन में, आपको बहुत मौका मिला है, इसलिए अमृत वेले से रात तक और कुछ भी याद ना आए, छोटा बच्चा बन जाओ, छोटा बच्चा। बाबा ने कहा बच्चा बन गए तो बच गए, बच्चे बच गए, बच्चा बन गए। तो छोटा बच्चा था, इतना इनोसेंट, इतना इनोसेंट, दुनिया की निगाहों से दूर, संसार में क्या हो रहा है कुछ भी होने दो, हम तो स्वर्ग में बैठे। एक मैं मिसाहसी की बात सुनाऊं, हमारे पास योग शिविर में एक भाई आया था, तो वो भाई ना उसको इतना अच्छा लगा तो सुनता था, कई कहते थे सच में हम तो स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसे सुनाते हैं। तो उसने अपने घर में फोन किया, कहता है माँ पत्नी ने जिसने पूछा होगा कि आप कैसे हो, कहता है मैं तो स्वर्गवासी हो गया। अब उसकी जो पत्नी थी वो तो डर गई, स्वर्गवासी हो गया माना क्या मर गया स्वर्गवासी, उसको पता नहीं था कि स्वर्गवासी माना मरना, उसको स्वर्गवासी कहते हैं। तो पत्नी ने कहा तुमको क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ब्रह्मा कुमारी ने मेरे पति को पागल बना दिया। अरे बाप रे, वो तो स्वर्गवासी हो करके वो फोन ही रख देता था। तो उसकी पत्नी दौड़ कर आ गई, ये भाई मेरे पति को आप लोगों ने क्या पागल बना दिया है, मैं अपने पति को तुरंत वापस लेके जाती हूँ। ये कहते स्वर्गवासी हो गया। फिर उसको समझाना पड़ा, भाई ऐसे मत बोलो, परंतु क्या हर एक ने स्वर्ग में आ गया, तो वो स्वर्ग में आ गया कि वो स्वर्गवासी हो गया, ये शब्द कह दिया। तो सचमुच हम तो यही कहेंगे, वैसे भी माना जाता है भगवान के पास कौन जाता है, मरने के बाद ही जाना होता है ना, मरने के बाद ही स्वर्ग भी मिलता है और मरने के बाद भगवान के पास भी जाना होता है, जीते जी तो नहीं होता है ना भाई, कोई मर गया तो क्या कहेंगे भगवान के पास गया या स्वर्गवासी हुआ, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो मरने के बाद ही स्वर्ग भी मिलता है और भगवान भी मिलता है, तो हम यहाँ किस लिए आए हैं, जीते जी मरने के लिए आए कि नहीं आए हैं। तो जीते जी जब यहाँ मरे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग का अधिकार तो मिल ही जाएगा, बाबा के पास परम धाम में भी हम जरूर संपूर्ण बन के पहुंच ही जाएंगे। इसलिए ये चार दिन ऐसे अनुभव करो सचमुच दुनिया से हम मर गए, एक बाबा की लगन में मगन। मम्मा हमेशा करती थी, कहती थी अपनी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। जैसे किसी की अंतिम घड़ी आती है तो उस समय और कुछ बातें याद आती है क्या, कोई बात याद नहीं आती, बहुत कहानियां इस पर, कहानी क्या सुनाऊं, लेकिन अंतिम घड़ी है तो क्या करना होगा उस अंतिम घड़ी में, तो ये मेरी अंतिम घड़ी है। तो अशरीरी बनना है, आत्मा अंत में अशरीरी होकर ही जाएगी, हमारा यही पहला पेपर और अंतिम पेपर है, पहला पाठ भी यही है अंतिम पाठ भी यही है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। उस दिन बाबा ने सारी मुरली इस पर ही चलाई थी, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना तो पाप भस्म होंगे, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी, बस यही पाठ सबको पढ़ाना है, ये पहला पाठ सो अंतिम पाठ है, बस यही पाठ यहाँ चार दिन आप पढ़ना, बाकी जो भी आपके क्लासेस होंगे अलग अलग हमारे अनुभवी भाई बहने आपको सुनाएंगे, उसमें सार यही होगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे, आत्मा सत्व प्रधान बन के घर जाएगी, ये सारे ज्ञान का निचोड़ है, सार है, और यही सार पहला और अंतिम पाठ है, बस इसी पाठ को ही इतना मजबूत करो तब हम अपने अंदर में पूर्ण परिवर्तन ला सकेंगे, ठीक है। तो यही भट्टी का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लक्ष्य में बुद्धि में रख करके पूरा समय इसका ही अनुभव करना है। तो अभी थोड़ी देर में शशि बहन जी आएंगी, हम सब फिर से बाबा की याद में बैठेंगे और जो सुना उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। ओम शांति। ताली नहीं बजाओ अभी, इसके बाद ताली नहीं बजाना, अगर कुछ थैंक्स देना बस हाथ हिलाना, एक हाथ की ताली, ये बाबा ने सिखा दिया भाई ताली नहीं बजवाना, ठीक है ना। हमने सबको भट्टी में कह दिया ताली मत बजाओ बस एक, क्योंकि आवाज होता उसमें भी, तो आवाज से तो हमको दूर जाना है। तो इसीलिए यहाँ मौन में रहेंगे, यहाँ भी आवाज से परे जाएंगे तो चलते फिरते भी आवाज से परे रहेंगे, ठीक है। तो एक हाथ की ताली जी बस। अभी हम सब फिर से बाबा की याद में बैठेंगे।